नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज का आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू से लिया गया है। ये मैरिज की एज महिलाओं के लिए जो बढ़ाए जाने का कैबिनेट का डिसीजन लिया गया है, जया जेटली कमिटी ने जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया है उस बारे में बात करता है। उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम आज के आर्टिकल में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए आज के आर्टिकल की ओर आते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है, महिलाओं की एज बढ़ाने का डिसीजन हाल ही में कैबिनेट ने यहाँ पे से लिया है। पार्लियामेंट में ये टेबल भी किया गया इससे संबंधित बिल, लेकिन ये अभी ये बिल जो है जा चुका है कमेटी के पास में, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में, इस पर और विचार होने के लिए। तो यहाँ पर इसी मुद्दों पर कि अगर ऐसा लॉ आता है तो इससे क्या फर्क और क्या परिणाम पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्य इस उद्देश्य से इस बिल को लाया जा रहा है, इस एज को बढ़ाया जा रहा है कि महिलाओं में जो मॉर्टिलिटी रेट्स होता है इसे कम करने के लिए। मॉर्टिलिटी खासकर जब यहाँ पर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है उस वक्त कितनी मृत्यु हो रही है वो हम मॉर्टिलिटी रेट से पता करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर परिणाम ना पड़े और मॉर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो, इसको देखते हुए यहाँ पर महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसे 18 से बढ़ा के 21 वर्ष करने की बात की गई। अब यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले, द इंक्रीज इन एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इज फ्यूटाइल इफ इट डज नॉट इंश्योर एक्सेस टू प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। तो आर्टिकल में बताया गया है कि अगर महिलाओं को समान बराबरी अपॉर्चुनिटी मौके अगर नहीं मिलते हैं तो इनकी एज को बढ़ाना भी कोई इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से हमारे देश में, आप जानते हैं जैसे हमारे देश में नागरिक संहिता नहीं है, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अलग अलग धर्म के लोग अपने अलग अलग यहाँ पे सिविल कोड फॉलो करते हैं। कुछ धर्म में ये कोडिफाइड है, कुछ में यहाँ पे कोडिफाइड नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे ही अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय में हमें देखने को मिलता है कि इनके पर्सनल, मुस्लिम समुदाय की जो पर्सनल लॉज है उसमें बहुत से लॉ, सिर्फ मुस्लिम समुदाय में नहीं दूसरे समुदायों में भी बहुत से ऐसे लॉज होते हैं जो कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। इस आर्टिकल में मुस्लिम समुदाय के लॉज की बात की गई है, तो मुस्लिम समुदाय के जो पर्सनल लॉज है इसमें अलग अलग हमें गैप्स और रॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए बहुत से लेजिस्लेशन भी लाए गए हैं। हाल ही में जो ट्रिपल तलाक को पैन करता हुआ लेजिस्लेशन आया है जिसमें 3 वर्ष का पिनल प्रोविजन का प्रावधान रखा गया है, तो इस प्रकार के और भी यहाँ पे लेजिस्लेशन समय समय पर लाए गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारों के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि लेकिन हमारे देश में पहले ही अगर हम देखें तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हमारे देश में मौजूद है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदायों में यहाँ पर ये उतना रूप में एप्लीकेबल नहीं होता है। एज ऑफ प्यूबर्टी को यहाँ पर मैरिज के लिए उपयुक्त माना जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत। तो कई बार हमें इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिलती है कि मुस्लिम समुदाय में 18 वर्ष से कम आयु में ही लड़की की शादी कर दी जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐसा कोई लॉ लाया जाता है तो यहाँ पे मुस्लिम समुदायों पर भी ये समान रूप पर एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर वाइल द रेस्ट ऑफ कम्युनिटीज आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट इट सीम्स अनफेयर फॉर मुस्लिम वुमेन, क्योंकि अगर इसे नहीं लाया जाता है तो मुस्लिम वुमेन पे ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण और अनफेयर होगा, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके अलावा जो अंतिम बिंदु इस आर्टिकल में चर्चा की गई है वो ये है, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो नोट दैट द इंक्रीज इन मैरिजेबल एज वॉज सेफ एट 18, कि मैरिजेबल एज जो है वो अपने आप में 18 में उपयुक्त है, सेफ है। क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टडी से सामने आया है कि अगर आप इसे बढ़ावा भी देते हैं तो जो न्यूट्रिशन लेवल है महिलाओं में वो इम्प्रूव नहीं होगा, और इसी न्यूट्रिशन लेवल के कारण कुपोषण और मॉर्टिलिटी रेट्स जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे देश में ये देखने को मिलता है कि बहुत सी महिलाएं जिनकी आयु 20-22 वर्ष भी है, उनमें से बहुत सी महिलाएं जो है, करीब 40-50% महिलाएं जो है वो अपने प्रेगनेंसी में यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस लेवल जो होते हैं उनको मैच नहीं कर पाती, जिससे चलते हुए कुपोषण और मॉर्टिलिटी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि जो हमारी कल्याणकारी योजना है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, इसके माध्यम से हम महिलाओं में जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे ठीक करें। उसके अलावा एक्ट का, अगर ये नया एक्ट आता है तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बहुत सी बार हमें ऐसे को देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर गैर समाज में अंतर जातीय विवाह देखने को हमारे देश में मिलते हैं, ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो जो पेरेंट्स यहाँ पर या जो समाज इस छोटी मानसिकता के साथ में ये रहता है कि अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, प्रेम विवाह, प्रेम संबंध गलत होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो लोग इस नए कानून, अगर ये कानून आता है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो महिला है और पुरुष है उन दोनों के ही अगेंस्ट ये जा सकता है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।